श्रीमद् भगवद गीता यथारू अध्याय दो गीता का सार श्लोक क्रमांक 60। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसभं मनः। शब्दार्थ यततः प्रयत्न करते हुए ही निश्चय ही अपि के बावजूद कौन्तेय हे कुंती पुत्र पुरुषस्य मनुष्य की विपश्चेत विवेक से युक्त इंद्रियाणि इंद्रियां प्रमाथिनि उत्तेजित हरन्ति फेंकती हैं प्रसभम बल से मनः मन को। अनुवाद व तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा प्रभुपाद की जय। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत
कृपा। तो इस पूरे अध्याय में या अध्याय के इस भाग में चर्चा हो रही है उस व्यक्ति की जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है। और यहाँ पे इन श्लोकों में चर्चा हो रही है, अर्जुन ने प्रश्न किया था कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है वो कैसे बैठता है। और बैठता का अर्थ ये है कि जब इंद्रिय भोग के विषय उसके सामने प्रस्तुत होते हैं तो किस प्रकार से वो निष्क्रिय हो जाता है, अपनी इंद्रियों को किस प्रकार से वो संयमित कर पाता है। तो उसी के उत्तर दे रहे हैं भगवान 58 यानी कि 58 और 59 60 61 62 63 यानी 8 श्लोकों में 6 श्लोकों में भगवान इस बात का उत्तर देंगे। और यहां पे पिछले 58 श्लोक आप देखेंगे उसे बोलते हैं कि जो जिसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है वो अपनी इंद्रियों को अपने खोल के अंदर खींच लेता है। मतलब कि जैसे कछुआ है उसका खोल बहुत स्ट्रांग होता है, उस पर कुछ असर नहीं होता, लेकिन जिसको अंग है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं। उसी प्रकार से अपने इंद्रियों को अगर हम भोगों में जाने देंगे तो हम लोग बहुत प्रभावित हो जाएंगे। मेरे ख्याल से कूलर को बंद कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है, पंखे से काम कर सकते। तो हाँ, हम बात कर रहे थे। और दूसरे इसमें तो वह ऐसा व्यक्ति समझता है कि इंद्रियों को अगर हम भोग में जाने देंगे तो हमारी स्थिति ठीक नहीं रहेगी, इस कारण से इंद्रियों को भोग से जाने से बचाता है प्रज्ञा उसकी प्रतिष्ठित है। और इंद्रियों को भोग में ना लगाने के बावजूद भी उनका उनकी आसक्ति बनी रहती है। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीता हो और उसको शराब पीने के लिए मना कर दिया जाए फिर भी शराब पीने की आसक्ति रहती है। एक कोई डायबिटीज व्यक्ति है उसको बोला जाता है कि मीठा मत खाइए फिर भी मीठा खाने की आसक्ति रहती है। लेकिन जिसकी प्रज्ञा इस प्रकार से प्रतिष्ठित है उसको भगवान की भक्ति करने में भगवान की सेवा करने में अधिक आनंद प्राप्त होता है। इस कारण से ये जो इच्छाएं हैं भोग की इच्छाएं वो उसको प्रभावित नहीं करती। अब तीसरा लक्षण यहाँ पे बता रहे हैं दूसरी तरह से भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये स्थिति प्राप्त करना इतना आसान है नहीं जितना कि लगता है। क्यों नहीं है आसान उस चीज को देख रहे हैं, इंद्रियों को वश में करना इतना आसान है नहीं। पहली बात तो लोग इंद्रियों को वश में करना चाहते ही नहीं, 99.9 लोग चाहते ही नहीं इंद्रियों को वश में करना। और जो वश में करना चाहते हैं उनको भी किस प्रकार की समस्या आती है उसके बारे में इस श्लोक में चर्चा होगी। जरा श्लोक को हम देखेंगे और इससे हमें ये भी मालूम चलेगा कि भगवद गीता कितना हमारे लिए लाभदायक है। आत्म साक्षात्कार में सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमको अपनी इंद्रिय संयम करना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल होता है और लोग चाहते ही नहीं है करना। आत्म साक्षात्कार तो वैसे भी नहीं करना चाहते, और उसके ऊपर अगर बता दिया जाए कि पहली चीज आपको ये करनी है कि इंद्रिय संयम करना है, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। इसीलिए इस पथ पे चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो पहले हम लोग कुछ विचार इस पे लेकर हम चलेंगे, और उसके बाद प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़कर फिर उस पर चर्चा करें। पहली बात जो शब्द पे आप ध्यान देंगे और उसमें आ रहा है विपश्चिता। विपश्चिता शब्द का अर्थ यह है वो व्यक्ति जिसके पास विवेक है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, और अच्छा बुरा जानने के बाद ऐसा नहीं है कि वो यत्न नहीं कर रहा है। शब्द आ रहा है यत्न तो मतलब समझते हैं यत्न करने वाला व्यक्ति, वो प्रयास भी कर रहा है अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए। लेकिन शब्द आगे आए हैं हरन्ति प्रसभं मनः। इन हरण मतलब होता है किडनैप कर लेना, हरण शब्द सुना होगा आपने। तो हरण शब्द होता है जबरदस्ती खींच के लेके जाना, यानी कि जो व्यक्ति जानता है, मूर्खों की तो बात ही नहीं हो रही, जो व्यक्ति जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है, और स्पेशली भक्ति में आने के बाद जब साधना करने लगते हैं तो ये ज्ञान होने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि इंद्रियां इतनी शक्तिशाली हैं कि व्यक्ति के मन को खींच ले जाती भोगों में। तो इतना आसान नहीं समझना चाहिए, इसके लिए भगवान की कृपा भी चाहिए और अपना बहुत दृढ़ प्रयास चाहिए। तो भगवान यहाँ ऐसे सामान्य लोगों के बारे में नहीं बोल रहे हैं जो इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। हमने चर्चा किया था पिछली बार, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं कर्मी और हैं विकर्मी। कर्मी और विकर्मी दोनों ही इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। कर्मी लोग वेदों के नियमों को पालन करके इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, विकर्मी लोग पाप करके प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। तो ऐसे लोग तो इंद्रियों को उनकी इंद्रियां उनके मन को हर नहीं करने का मतलब ही नहीं हो, पहले से हरा हुआ है, उनका उद्देश्य ही भोग करना है, चाहे वैदिक तरीके से चाहे पाप कर। तो उनके बारे में भगवान नहीं बोल रहे हैं। प्राय ऐसे लोग सोचते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य जो है वो इंद्रिय तृप्ति है, तो वहां ये चीज अप्लाई होगी ही नहीं कि ये तो अभी कौन तैयार, वो इसी को अच्छा मान रहे हैं, इंद्रिय भोग को ही अच्छा मानते हैं, तो उनमें तो विवेक है ही नहीं। क्यों विवेक नहीं है इसके बारे में भगवान ने स्वयं बताया है, या इमाम पुष्पताम वाचा प्रवदन्ति उपश्चितः। और आगे बोलते हैं नानादस्तित्ववादिनः, ये जो वेदवादी लोग हैं, अब देखेंगे आप कि ऐसे लोग भी बहुत कम हैं। इन लोग सोचते हैं ऐसा बोलते हैं, एक्चुअली भगवान के समय में थे ऐसे लोग, कि वेदों का उद्देश्य क्या है, हम कुछ यज्ञ करें और उसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और हम भोग करेंगे वहां पर। अगर वापस उनको पता है वापस गिरना भी पड़ेगा तो क्या दिक्कत है, फिर से पुण्य करेंगे और फिर से भोग की प्राप्ति करेंगे। तो उनके अनुसार वेदों में इससे अधिक और कुछ भी नहीं। तो ये आप दिखा सकता है कि उनके पास कोई विवेक नहीं है, आत्मा और शरीर के भेद का विवेक नहीं समझते। तो यानी कि क्या चीज वो नहीं जानते हैं, एक कि जीवन में इंद्रिय तृप्ति से ऊपर भी कोई उद्देश्य होना चाहिए। क्या नहीं जानते हो, पहली चीज इंद्रिय भोग से ऊपर भी कुछ उद्देश्य है वो नहीं जानते, वो सूक्ष्म हो सकता है यानी कि स्वर्ग में जाए चाहे यहां पे प्राप्त करें। दूसरा चीज क्या है, वो ये नहीं समझते हैं कि आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति तब होती है जब हमारी चेतना शुद्ध होती है। तो चेतना शुद्ध करने के बारे में वो कोई चर्चा नहीं करते। इससे पहले भी आप देखिए किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, कभी किसी ने बताया कि आपको हृदय शुद्ध करना है, कभी आप बताइए आज तक आप लोग की आप लोग बहुत सारी पूजा करते आए हैं और अभी शायद करते होंगे, किसी भी पूजा में आया है कि इस पूजा से आपने हृदय को शुद्ध करना है, ये फायदा मिल जाएगा, ये इंद्रिय तृप्ति मिल जाएगी। तो आप देखेंगे वो पूरी तरह से वेदों को ना माने लेकिन वेदों की कुछ कुछ बातों का उद्देश्य जो कर्मकांड से आता है उसी में लगे हुए। तो ऐसे लोग अपनी इंद्रियों को संयमित करने के बारे में नहीं सोचते। इन सबसे श्रेष्ठ हैं योगी लोग, जो लोगों के पास विवेक है, जो समझते हैं कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, और उसके कारण वो ऐसी योग पद्धति का अनुगमन करते हैं जिससे उनकी चेतना शुद्ध हो और वो आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति कर सकते। जैसे हम सब लोग हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहे हैं, उम्मीद है कि आप लोग इसलिए कर रहे होंगे ताकि हमारा हृदय शुद्ध हो जाए और हम भगवान की भक्ति के सुख का अनुभव कर पाए। नेचुरल सी बात है, सुख का अनुभव करना चाहते हैं लेकिन आध्यात्मिक सुख। तो यहां बता रही है कि जो लोग इस प्रकार से आत्मा और शरीर के अंतर को समझते हैं, जो इस प्रकार के नहीं, किस प्रकार के लोग नहीं है, कर्मियों की तरह नहीं है, वो भी प्रभावित हो जाते हैं इंद्रियों से। उनका उनको ज्ञान है कि भाई ये आत्मा है, ये शरीर है, इस शरीर से कोई सुख नहीं मिल सकता है, लेकिन फिर भी इंद्रियां उनको खींच ले जाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसको नहीं खींच पा रही हैं, वाकई उसकी जो प्रज्ञा है, जो उसकी बुद्धि है, वो भगवान में स्थित है और उसकी स्थिति बहुत उच्च कोटि की। समझ आ रहा है एक श्लोक क्यों बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको लगेगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसकी इंद्रिय सही में थे तो कौन सी बड़ी बात है? लेकिन हम देख सकते हैं भक्ति में आने के बाद भी वो स्ट्रगल होता है इंद्रिय को सहमित करने का। ठीक है, तो इन तीनों लोगों के क्या, इन तीनों के क्या गुण हैं इन योगियों के, उसके ऊपर हम बताना चाहते हैं। पहली बात ये कि वो कर्मियों की तरह भोगोन्मुख नहीं है, ऐसा नहीं कि हमेशा भोग की तरफ लगे रहते हैं। ठीक है, किन के बारे में बात कर रहा हूं मैं, योगियों के बारे में। दूसरा पॉइंट इसमें है कि उनको ज्ञान है और ज्ञान के अनुसार वो प्रयत्न भी कर रहे हैं, सुबह उठना, जप करना, भक्ति करना, भोग लगाना, सारा कुछ कर रहे हैं। और तीसरा कि ये लोग भी भोग की तरफ ड्रग करते हैं, मतलब खिंच जाते हैं। और इसको ये होता कैसे, ये बहुत सुंदर बात समझने का प्रयास कीजिएगा। इस चीज को हमने चर्चा किया था पहले 15वें अध्याय का 9वें श्लोक में, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाया मनश्चायम विषयानुपसेवते। हमारी आंख, हमारे कान, हमारी नासिका, हमारा चखने का इंद्रिय रसना और हमारा स्किन, स्किन को क्या बोलेंगे, त्वचा, ये हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, ये बाहर के अपने विषय वस्तुओं से संपर्क करती हैं और अंदर में हमारे मन से संपर्क करती हैं। समझ में आ रहा है बात, स्विच, ये कह सकते इंटरफेस, इंग्लिश में बोलेंगे इसे इंटरफेस है। आंखों के द्वारा आंख अपने विषय वस्तु क्या है, आंख का रूप, तो उस रूप को देखती हैं और उस रूप के को वो भेजती हैं मन को। तो मन को इससे भोज्य पदार्थ मिलता है, भोग मिलते हैं। जिस प्रकार से ये मेरी उंगलियां आप देख सकते हैं, ये उंगलियां इस हथेली के इर्द गिर्द लगी हुई हैं। ऐसे ही ये पांच उंगलियां हैं, उंगली और अंगूठा, और ये मेरे पांच, मतलब मेरे हथेली के आसपास है। उसी प्रकार हमारे मन के इर्द गिर्द ये पांच ज्ञानेंद्रियां लगी हुई हैं और ये लगातार सिग्नल भेजती रहती है, इनपुट भेजती रहती है। देखो ये चीज, ये सुंदर रूप कितना है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार से अगर ये एक उंगली इधर खींच ली जाए तो पूरी हथेली इधर भागेगी ना। उसी प्रकार से हमारी एक भी इंद्रिय अगर भोग के विषयों पे लग जाती है तो हमारा मन फिर वहीं पे खींचा चला जाता है। तो होता क्या है, होता ये है कि जब अपनी इंद्रियों को हम भोग पे लग ध्यान करने के लिए, भोग के विषयों पे संग में आने के लिए अलाउ कर देते हैं या उनको आज्ञा दे देते हैं, तो हमारे हृदय में एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और उस इच्छा के बाद होने से, इच्छा होने से क्या होता है, उस इच्छा को पे हम अब ध्यान करने लगते हैं, जिसके बारे में आगे भगवान बताएंगे। जो कोई वस्तु आपने देखी नहीं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे माता जी लोग हैं, तो जिस साड़ी को, जिस ज्वेलरी को आपने कभी देखा ही नहीं, उसके बारे में इच्छा होगी प्राप्त करने की। या प्रभु जी लोग हैं, जो बाइक आपने कभी देखी नहीं है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है बाइक के प्रति आकृष्ट हूँ, लेकिन मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जिस बाइक के प्रति आपने कभी बाइक देखी नहीं, सुनी नहीं, उसके प्रति कोई आकर्षण होगा। और फिल्म, जितने भी टीवी के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, वो क्या करते रहते हैं, आपको नई नई वस्तुएं दिखाते हैं जो आपने कभी देखी नहीं, फिर आपके हृदय में इच्छा आती है, फिर आप सोचते हैं मैं इसको कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। अब आप प्रैक्टिकली महसूस कर रहे हैं ना, यदि व्यक्ति टीवी नहीं देखे तो नीम की दातुन से ही पूरा जीवन बिता देगा, लेकिन कोलगेट क्यों खरीदते हैं, क्योंकि बार बार दिखाया जाता है, पहली बार देखेंगे आप नहीं सोचेंगे, फिर बार 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 जब देखते रहते हैं तो फिर हृदय में इच्छा आती है, फिर इच्छा आने के बाद क्या होता है, अब ध्यान करते रहते हैं, अब सोचते हैं इसके बिना तो मेरे दांत चमक ही नहीं सकते, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। आप विचार करिए कि स्पेशली आजकल के समाज में इतना एडवर्टाइजमेंट होता है, कितनी सारी चीजें जो हमारे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है हम पर थोपी जाती है और उसको हम लोग पैसे देके खरीदते हैं। किसको, मतलब ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो टीवी चला चला करके हम खुद देखते हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझता है कि इस प्रोसेस में किस प्रकार से हमारे मन पे जबरदस्ती इच्छाएं थोपी जा रही हैं उन वस्तुओं के लिए जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अब जब इच्छा आ जाती है हृदय में, अब जब उस पर हम ध्यान करने लगते हैं तो फिर वो इच्छा विकराल होने लगती है और इतनी विकराल होती है कि हम सोचते हैं अब हमारा जीवन उसके बिना रह ही नहीं सकता। जैसे मैं अपना उदाहरण दूंगा, बचपन में मैं शायद 10वीं क्लास में था तो एक मेरे मित्र ने कंप्यूटर खरीद लिया। उस समय कंप्यूटर बहुत बेसिक हुआ करते थे, लेकिन वो बेसिक कंप्यूटर भी 25,000 रुपए का होता था, तो उसने ले लिया और मुझे कोई खास जरूरत नहीं थी, लेकिन जो मैं उसके घर में देख के आया तो मेरे कहा इसके पास कंप्यूटर है, मेरे पास भी होना चाहिए। तो पहले तो मैंने देखा, फिर इच्छा आ गई, फिर मैं सोचने लग गया, फिर मेरे पिताजी ने बोला हाँ मैं तुमको दिला दूंगा। अब क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि इसको दिला दूंगा, अब मेरी इच्छा और बलवती होती चली गई कि अब कब दिलाएंगे, कब दिलाएंगे, कब दिलाएंगे। और बाद में उन्होंने कहा नहीं बहुत महंगा है, मैं नहीं दिलाऊंगा। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं थोड़ा रोया झगड़ा जैसे कहने। तो आप देख सकते हैं उसी प्रकार से जब हमारे हृदय में कोई भौतिक इच्छा आती है और हम अपने बुद्धि के द्वारा अपने मन को बोलते हैं हाँ हम उनको दिला देंगे, तो फिर मन और उस पर सोचने लगता है, सोचता रहेगा, होता है कि नहीं होता है? और फिर हम उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते, जगह कुछ कार्य करने के लिए कर ही नहीं पाते। तो भगवान बोल रहे हैं किस प्रकार से हमारी इंद्रियां हमारे मन को खींच ले जाती है, जबकि मन कहाँ लगना चाहिए, हरि में लगना चाहिए, लेकिन ये हरंती हर जाती। एक और उदाहरण इसमें समझाया गया है कि जैसा एक जो यहाँ पे कछुए वाला एग्जांपल भगवान ने पहले दिया था कि अपनी इंद्रियों को अंदर खींच लिया, लेकिन कब तक, फिर हमें कभी ना कभी तो अपने अंगों को बाहर निकालना पड़ेगा। ऐसे ही ऐसा तो नहीं आंख बंद करके बैठ जाए, कान बंद करके बैठ जाए तो फिर हम पत्थर जैसे हो जाएंगे। जैसे ही बाहर निकालेंगे और अगर भोग के विषय आ गए सामने तो वो अंदर घुसेंगे। ये बहुत खतरनाक जगत पे हम रह रहे हैं। तो इसलिए माया, इसीलिए भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्य, माया बहुत प्रबल है। इसमें एक बहुत सुंदर बात यह है कि भक्तों का जीवन अगर नियमित हो तो उनको नियम से भगवान के विषयक इंद्रिय विषय मिलते हैं। जैसे अगर वो टाइम से प्रसाद पाते हैं तो उनका पेट भरा रहता है, तो बाहर के खाने की उनके प्रति आकर्षण नहीं होते। अगर भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान के विग्रह की सेवा करते रहते हैं तो अपने आप ही जगत के रूप के प्रति आकर्षित होना छोड़ देते हैं। तो हमारे लिए बहुत लाभकारी है कि अपने जो दिनचर्या है उसमें अधिक से अधिक भगवत विषयक इंद्रिय तृप्ति के विषय होने चाहिए। इंद्रिय तृप्ति नहीं, लेकिन इंद्रियों के विषय होने चाहिए। भगवान के बारे में सुनने का नियम होना चाहिए, मुझे कम से कम 1 घंटा सुनना है, इतने माला जप करना है, इतना सुनना है, इतना पढ़ना है, तो फिर आपका मन की संभावना कम है कि वो इधर उधर के विषयों में जाए। आप देखिए मन बुरे विषयों में तभी ज्यादा है जब हम खाली रहते हैं, कुछ करने के लिए रहता। और अगर लगातार ये रहे कि मुझे पढ़ना है, मुझे जप करना है, मुझे भक्ति करनी है, इतना इतना करें तो आपका मन उसमें एंगेज रहता है। इसीलिए बोला जाता है कि आप माला से कीजिए, इतने माला रोज करिए, इतने समय आरती करिए, ये बहुत आवश्यक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नहीं तो हम ऐसे बस जब मन में आएगा जब करेंगे, जब मन में आएगा पढ़ेंगे, जितना होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तो प्रगति में थोड़ी दिक्कत होती है। बहुत सुंदर है, प्रभुपाद भी उदाहरण दे रहे हैं इसमें और उसको भी देखेंगे, विश्वामित्र मुनि का। लेकिन जब विश्वामित्र के मुनि के एग्जाम्पल हम प्रभुपाद जी का परपोट पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम जरा प्रभुपाद के तात्पर्य को देखते हैं। अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा दिया कि विचलित मन कैसे होता है, जब इंद्रियों को हम भोग के विषयों से जोड़ते हैं, हृदय में इच्छा आती है, इच्छा पे हम ध्यान करने लगते हैं और फिर ये सोचने लगते हैं कि ये चीज करके, ये कार्य करके मैं सुखी हो जाऊं। ये है उल्लू बनाने का कारण। इंद्रिय भोग से हम कभी सुखी नहीं हो सकते, लेकिन पूर्वगत संस्कारों की वजह से जब वो इच्छा आ जाती है तो हम सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत सुंदर है, सो करके मैं सुखी हो जाऊंगा। इसके ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये बात हम विश्वामित्र मुनि के कंटेक्स्ट में चर्चा करेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात, मन एक मानसिक महल बना लेता है सुख का, मनोधर्म से कहते हैं मानसिक कल्पना। यहां तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। तो अभी एग्जाम्पल यहाँ पे है, आप लोगों को कथा पता है इसलिए मैं कथा नहीं बताऊंगा। अब ये बताइए, अगर घुंगरू की झनकार का उनके पतन से क्या संबंध है? हो सकता है कोई लड़का भी घुंगरू पहन करके चला जाता हो, वो जा रहा उनके तपोवन से और वो आवाज सुन रहे थे उसको, लेकिन जब उनने घुंगरू की आवाज सुनी मेनका की तो उनके मन में तुरंत वो जो इच्छा थी वो बलवती हो गई, उसका महल बनने लग गया अंदर, क्योंकि इतनी सुंदर अप्सरा होगी, और क्योंकि उनका पूर्व का उनका ऐसा अनुभव था राजा होने के कारण। तो जो मन है अपने पूर्वगत संस्कारों की वजह से महल बनाने लगता है। इस कारण से कितने सालों के बाद, जो हमने सुना है 60,000 साल ना, कितने सालों के बाद भी वो संस्कार जाता नहीं। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि बहुत बहुत मुश्किल है। और देखिए उस समय वो भोग करने का प्रयास नहीं कर रहे थे, वो स्वर्ग जाने का प्रयास नहीं कर रहे थे, वो ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे, इंद्रियों का निग्रह करना चाह रहे थे और कठोर तपस्या कर रहे थे। तो एक ज्ञानेंद्रिय, एक इनपुट आया और उसके बाद क्या होने लगता है, वो महल बनने लगता है। हर व्यक्ति जानता है कि जब हम लोग इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते हैं तो जितना सुख सोचने से मिल रहा है उतना भोग करने से नहीं मिलता। जैसे आप सोचिए कि मैं रसगुल्ला खाऊंगा तो रसगुल्ला खाऊंगा सोचते रहे, लेकिन जितना सुख आप सोचोगे कि मिलेगा उतना सुख रसगुल्ला खाने से मिलता नहीं। इसीलिए भक्त लोग केवल अपने शरीर को चलाने के लिए इनके भोग देते हैं। इस बात में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ा अच्छा बोलते हैं कि सारी इंद्रियों को शक्ति मिलती है पेट से, और पेट को भोजन मिलता है अपनी जीव से, और जीव अच्छी अच्छी चीजें खाना चाहती है, तो बड़ा आसानी से अगर आप इंद्रिय निग्रह करना चाहते हैं तो खाना बंद कर दीजिए। लेकिन खाना बंद करने से क्या होगा, जीव की इच्छा और बढ़ जाती है खाने की। जैसे मान लीजिए आप रूप नहीं देखना चाहते तो आंखें बंद कर लीजिए या रूम में बैठ जाइए, तो जो डिस्टर्ब करने वाला रूप है वो नहीं दिखाई पड़ेगा, तो मन शांत होने लगता है। लेकिन जीव अलग तरह से कार्य करती है, अगर आप भोग पदार्थ नहीं देंगे तो ये उसकी लालसा बढ़ जाती है, और अगर देंगे तो अन्य इंद्रियां प्रबल हो जाती हैं। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भक्तों को भगवान का प्रसाद समुचित मात्रा में, ना बहुत अधिक ना बहुत अधिक कम, ऐसे खाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए जब तक हम अपनी जीव को नियंत्रित नहीं करते हैं तब तक हमारी कोई भी इंद्रिय नियंत्रित नहीं हो सकती। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। इसमें बड़ा सुंदर धारण में चैतन्य महाप्रभु का आ रहा है, ऑल्दो ये स्थिति बहुत उच्च कोटि की होती है, जिसमें मन, मतलब यह साधकों की बात नहीं है, जब मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है भक्ति करते करते तो भगवान के रूप गुण के माधुर्य को मन आस्वादन करने लगता है। ये योग माया का जो आवरण है वो हट जाता है, जिसके द्वारा हम भगवान के माधुर्य को अभी समझ नहीं पा रहे, तो फिर अलग स्थिति हो जाती है। वो कान से भगवान की वाणी सुनना चाहता है क्योंकि भगवान की वाणी सुनने का उसको अनुभव मिलता है, उसको नाक से भगवान के जो शरीर से होने वाली दिव्य गंध है वो सूंघने लगता है, तो वहां उसकी तरफ भागते हैं। नहीं, हर इंद्रिय भगवान की तरफ भागने लगती है, तो तब वो जो है कोई दिक्कत नहीं रहती। लेकिन वो स्थिति यानी जीरो लेवल मान लीजिए जहां पे हमारे सारी इंद्रियां भोग की तरफ जा रही हैं, और 100% वाली स्थिति जहां पे सारी इंद्रियां भगवान की तरफ जा रही हैं, उसके बीच में हम सब लोग कहीं पे हैं। अगर आप लोगों को कथा सुनना अच्छा नहीं लगता तो आप यहाँ नहीं आते। अगर आपको भगवान का स्वरूप का स्मरण करना या देखना अच्छा नहीं लगता तो विग्रह नहीं रखते, सेवा नहीं करते। तो आप लोग बिल्कुल, हम सब लोग बिल्कुल भोगी भी नहीं है और बिल्कुल 100% शुद्ध भक्त भी नहीं है। तो इसलिए यतन करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, या कह सकते हैं यतन करने के लिए हमें सोचना चाहिए कि हमें यतन करना ही पड़ेगा अपनी इंद्रियों को सीमित करने के लिए। अपने आप नहीं होने वाले, क्या आप बैठे बैठे बस आपका मन कृष्ण में जाएगा, वो नहीं होने वाला, प्रयास करते रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ऐसे भक्त के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं जिनकी इंद्रियां इस प्रकार की हैं जो भगवान की तरफ जाती हैं। तो देखिए, परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक भक्त जब शुद्ध हो जाता है तब उसकी इंद्रियां कितनी आसानी से संयमित हो जाती हैं। इसके ऊपर बहुत सुंदर कथा बताई गई है विस्तार में यमुनाचार्य जी के बारे में, हिंदी में है, मैं उसको कंप्रेस करके भेजूंगा अगली बार कभी जब भी समय मिलेगा, बहुत सुंदर है, लेकिन शॉर्ट में है। यहाँ पे देखिए कहते हैं, यदवधि मम चेतः कृष्ण पादारविंदे नव नव रस धामनि उद्यतम रस रन्तुमासीत् तदवधिवत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्टीवनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणार विंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूं, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूं। तो ये श्रीपद यामुनाचार्य जो हैं, छोटा सा मन के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। ये बचपन से ही भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के, और उनने एक महान राजा के, जो वहाँ पे राजा थे उनके एक बहुत बड़े पंडित थे, उनको हरा दिया था। वो कथा बहुत लंबी है, उसको नहीं समझा रहे। तो फिर रानी और राजा के बीच में एक शर्त लगी थी कि ये छोटा बच्चा अगर इस पंडित को हरा दे तो रानी ने कहा कि आप क्या करेंगे, तो कहा कि मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो बोले अगर ये नहीं हरा पाए तो क्या होगा, तो कहते हैं मैं आपकी दासी बन जाऊंगी, आपकी रानी नहीं रहूंगी। लेकिन वो बच्चा हरा देते हैं। जानना चाहेंगे कैसे हराते हैं? चलिए बड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। उस पंडित का नाम था विद्वाजन कोलाहल। विद्वाजन मतलब समझते हैं, जो विद्वान जन है उनके बीच में कोलाहल करने वाला। और उसने एक मतलब उसका नियम था कि कोई भी व्यक्ति, जितने भी विद्वान लोग थे राज्य में, वो उसको कर देंगे, और अगर कर नहीं देते हैं तो उसको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, अगर वो हार जाते हैं तो उनको जान से मार देंगे। इतना कोलाहल हो जाएगा ना, घबराहट हो जाएगी। तो ऐसे करके ऐसे एक बार इनके गुरुजी यामुनाचार्य, उनका नाम यामुनाचार्य नहीं था, कुछ और नाम था, याद नहीं आ रहा बचपन का नाम। तो वो अपने गुरुजी के पास थे और उनके विद्वाजन कोलाहल के जो चेले थे वो आए और ड्रम पीटते हुए कि तुम्हारे गुरु ने कर नहीं दिया है, वो मेरे हमारे गुरुजी से हार गए थे। तो उन्होंने कहा तुम तो बहुत अहंकारी हो, तुम्हारे गुरु कितने अहंकारी होंगे। कहते अच्छा, तो कहते ठीक है तुम आकर शास्त्रार्थ करो। तो अपने गुरुजी के आशीर्वाद लेकर के वो जाते हैं, और बहुत छोटे होते हैं। तो जैसे एंटर करते हैं तो रानी यही बोलती है, उनके जब आते हैं तो विद्वाजन कोलाहल बोलता है, अरे तुम तो बहुत छोटे हो, तुम क्या शास्त्रार्थ करोगे। तो उन्हें बोला कि अगर ज्ञान केवल शरीर के साइज पे निर्भर करता है तो जो भैंस है उसके पास अधिक ज्ञान होना चाहिए क्योंकि वो आपसे बड़ी है। तो उन्हें कहता, तो जब ये बात सुनी तो रानी समझ गए कि बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, और वो तिलमिला गया। तो फिर वही बोलती है कि ये इसका नाम है अलबंदारू। अलबंदारू मतलब जीतेगा ही, सबको जीतने वाला। तो फिर उन्होंने प्रश्न किए विद्वाजन कोलाहल ने, बहुत सारे प्रश्न किए, पर आसान आसान प्रश्न किए। तो उन्होंने बोला कि आप इतने आसान आसान प्रश्न क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने मुश्किल प्रश्न किए, सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। फिर उसने बोला कि ठीक है अब मैं प्रश्न करता हूँ, या उन्होंने बोला अब आप प्रश्न करो, तो उन्होंने बोला कि आपको तीन बातों का खंडन करना है। पहला, रानी प्रतिव्रता है, इसका खंडन करना है, मतलब ये प्रमाणित करना है कि रानी पतिव्रता नहीं है। तो बड़ा खतरनाक है, सोचने लगे अरे भाई रानी तो पतिव्रता है और अगर मैं इसको खंडन करूंगा तो राजा मेरी गर्दन काट देगा, चुप रहे नहीं। फिर बोले कि आपकी माता बांज हैं, मेरी माता बांझ है, मैं तो जीवित हूं, बांझ कैसे, मैं तो पैदा हुआ बांझ कैसे हो सकती, चुप रहा। और एक एक प्रश्न उन्होंने आज किया था जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन दो तीन प्रश्न किए थे, तो चुप रहे, वैसा कहते ठीक है मुझे उत्तर नहीं पता, तुम बताओ उत्तर क्या है इसका। तो उन्होंने बोला कि देखिए राजा जो है वो सभी देवताओं का प्रतिनिधि, पांच देवताओं का प्रतिनिधि होता है, तो जब रानी तो पतिव्रता है राजा के प्रति, लेकिन क्योंकि वो उनके संग करती तो एक्चुअली पांच लोगों का संग करते हैं, तो उस दृष्टि से पतिव्रता नहीं, शास्त्र से वो कोट करते हैं। फिर बोले कि अगर किसी मतलब माता का एक ही लड़का होता है तो शास्त्र के अनुसार उसको बांझ बोल जाता है, तो इसलिए आप एक ही लड़के हैं इसलिए आपकी माता बांझ है। और एक और प्रश्न करते हैं तो हार जाते हैं। तो फिर जो है रानी कहती है अलबंदारू अलबंदारू, यानी कि ये जो है सर्वविजयी है, और फिर वो राजा बन जाते हैं। तो इस प्रकार से राजा बनने के कारण वो अपनी भक्ति के पथ को भूल जाते हैं, पूरा काफी समय बीत जाता है। और बाद में नाथ मुनि जो उनके नाना जी थे वो बहुत महान वैष्णव थे, और वो शरीर त्यागते समय अपने शिष्य को बोलते हैं, राम मिश्र नाम था उनका जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है, कि आप कृपया जाकर के उसको वापस भक्ति के पथ में लेके आइए। तो जब वो जाते हैं तो वो भी लंबी कथा है, एक साल तक वो कुछ बोलते नहीं, खाली साग खिलाते रहते हैं, बुलाते हैं साग तोड़ खिलाते हैं, कुछ तो खाना मलाई या तो कुछ नाम से साग था, और वहाँ राजा के रसोइये को दे देते हैं, वो बनाता है और वो खिलाता है। क्योंकि इस प्रकार का खाना खाने से उनके चित्त में सतोगुण की वृद्धि हो रही थी, राजा प्राय रजोगुण में रहते हैं, और फिर वो कई एक दिन गुरु नहीं देते हैं जानबूझ कर, तो कहते हैं अरे वो आपने साग क्यों नहीं बनाया, तो उन्हें बोला वो महात्मा आए नहीं जिन्होंने साग लेके आते थे। तो फिर उन्होंने कहा कौन से महात्मा है, तो फिर उनसे मिलते हैं और अपना परिचय देते हैं, और वो बोलते हैं कि आपके आपके दादाजी ने आपके लिए बहुत बड़ा खजाना छोड़ के गए हैं, लेकिन आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो वो साथ पैदल पैदल चलती, और रास्ते में मिश्र जी भगवत गीता के श्लोकों को बोलने लगे, तब उनको स्मृति आ गई अपनी, और कह रहे वो मैंने कितना समय इंद्रिय भोग में लगा दी। फिर वो दोबारा कभी वापस अपने राज्य को नहीं गए, और रंगनाथ जी के मंदिर में जाकर वहीं पे अपना जीवन को समर्पित कर दिया और महान आचार्य बने। तो वही भक्त बोल रहे हैं, मैं इसलिए बताया कथा क्योंकि आपको इस समझ में आना चाहिए कि आचार्य होते हुए भी उनको स्त्री प्रसंग की बात कैसे याद आ गई, क्योंकि जब वो राजा थे तो बहुत सारी उनकी रानियां थी और उन्हें बहुत सारा संग किया था, तो वो संस्कार मन में थे। यही बात हमें समझ में आना चाहिए कि जब भक्ति कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि जो पूर्व जन्म के संस्कार या इस जन्म के संस्कार हैं वो तुरंत खत्म हो जाएं। आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का सुख भी मिल रहा है, फिर भी एकदम अकस्मात से कोई बुरे विचार आ जाते हैं, तो कोई बुरा विचार आ गया है इसका मतलब ये नहीं है कि उस बुरे विचार पर मुझे कार्य करना है। ये सेक्शन में इसीलिए मैं अपने डिस्कशन में छोड़ दिया था, अब मैं उसको डिस्कस कर रहे हैं ये बात समझाने के लिए। एक शुद्ध एक कह सकते हैं प्रगतिशील भक्त या जो उच्च भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि उनके मन में कोई पुराने जो विचार हैं या बुरे संस्कार के वो नहीं आते, लेकिन उसको वो त्याग देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए गेट पे कोई आता ना सामान बेचने के लिए और आप समझे कि खराब चीज़ें, कहते हैं हमें नहीं चाहिए, नहीं गेट पे आया है आप देख रहे हो कि वो आया है, हमें नहीं चाहिए, हटो हमें नहीं चाहिए, हम नहीं ऐसे करते। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है कहेगा हाँ आओ जरा देखें हम क्या करते हैं, क्या सोचा जाता है, देखते हैं कि आप क्या लेके आए हो। उसी प्रकार से जो हमारे मन से उत्पन्न भौतिक इच्छाएं हैं वो उभरती रहती हैं, इस बात को आगे भी भगवान बताएंगे। तो जो एक नवसिख्या भक्त है वो उन पे कार्य करने लगता है, और जो उच्चतर भक्त हैं वो समझते हैं कोई दम नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये बात समझाने के लिए मैं बता रहा था कि इस प्रकार से यमुनाचार्य जैसे महान भक्त जिनको भगवान की भक्ति में बहुत सुख मिल रहा है, वो भी कह रहे हैं कि जब मेरे मन में इस प्रकार के बुरे विचार आते हैं तो मैं सोचता हूँ क्या कितना गर्हित है, मैं कितनी खराब चीज है। तो ये दिखा रहा है कि उनको उस चीज का अनुभव है, भोगों का अनुभव है, फिर भी अब वो समझ रहे हैं कि वो कितने निकृष्ट थे, कितने अज्ञान के कारण मैं उस भोग में लगा हुआ था, और अब भगवान की कृपा से मैं कितने सुंदर भक्ति के रस का आस्वादन कर रहा हूं। ठीक है, और इसी कारण से उनका चित्त जो है भगवान में फिक्स रह स्थिर रह पाता। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः नीरस हो जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, भक्ति कर रहा है व्यक्ति, कर रहा है तो फिर एक दिन लगता है कि अरे थोड़े पुराने भोग वापस ट्राई करता हूँ, लेकिन क्या होता है आप देखोगे कि उसमें वो रस नहीं मिलता है जो उसको पहले मिलता था। जब बार बार ऐसा अनुभव होने लगता है फिर सोचता है अरे मैं मन की बात सुनने से क्या फायदा, उससे अच्छा तो मैं भक्ति ही करता रहा, वो थोड़ी जो इच्छा उसको छोड़ देना चाहिए, वही खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है? पता नहीं आप लोग जितना भक्ति करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये पहले जो जितना अच्छे से भक्ति करता है उसको इस बात का और अधिक अनुभव होता है कि भगवान उस रस को खत्म कर देते चीज। आपको लगेगा अभी भी लगेगा शुरुआत में वो बहुत आकर्षक लगेगा शुरुआत में, बाद में जब वाकई आप उसको देखने लगेंगे इसमें कुछ दम नहीं है। जैसे अभी कुछ बीच में ऐसा हुआ था एक हफ्ते पहले कि मेरे फोन में क्रोम है और उसमें अकस्मात में न्यूज आने लगी, और जबकि मुझे न्यूज देखने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैं एनकरेज भी नहीं करता हूं न्यूज देखनी चाहिए। तो पहले मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, दूसरी तीसरी बार चौथी बार फिर मेरे को रुचि आने लगी पढ़ने के लिए। फिर जब मैंने पढ़ने लगा तो मैंने देखा कि इसमें कोई दम नहीं है, ये सारे लोग केवल अपनी मानसिक कल्पना कर रहे हैं, कोई आधार नहीं है और आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में बातें हो रही। तो फिर मैंने तुरंत अपने क्रोम को डिसेबल कर दिया और दूसरी ऐप डाल दी, इसमें कोई न्यूज नहीं दिखाई पड़ती। तो मैं अपना उदाहरण क्यों बता रहा हूँ कि देखिए हम इंद्रिय निग्रह करने का प्रयास कर रहे हैं, फोन का उपयोग हम भगवान की सेवा में करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन माया किसी ना किसी तरीके से हमको डिगाने का प्रयास करती रहती। लेकिन ये भी हमें अनुभव होता है कि जितना आनंद जितना सुख भगवत चर्चा में है भगवत विचार में है उतना सुख इन वस्तुओं में, वो दोनों चीजों का अनुभव है। इसीलिए मैंने ये स्पेशल डिवाइस ली है पढ़ने के लिए, जिसमें हम केवल पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बहुत आनंद आता है इसमें, मतलब बहुत सारे शास्त्र हैं जो मेरे को अच्छे लगते हैं उसको पढ़ सकते हैं, तो वो जो तृप्ति उसका अनुभव भी हो रहा है। इस कारण से महसूस कर रहा है इसमें कुछ जरूरत नहीं, ये नहीं चाहिए। जैसे आप किसी फीस्ट में जाएं और वहां पर करेले की सब्जी हो, पता नहीं कितने लोगों को करेला अच्छा लगता है, लेकिन जिनको पता है करेला क्या होता है वो पहले मना करते हैं, हमें करेला नहीं चाहिए, हमारा ये रसगुल्ला मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ऐसा मेरा एक अनुभव उसमें है मजेदार की मुझे बैगन आलू की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है, और मुझे कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि इसमें नीम डाल सकते हैं, और वहां पे वो लोग और बंगाली भक्त लोग खूब जम जम के ले रहे थे, हाँ लाइए मेरे को भी दे दीजिए। और फिर जब मैंने खाया तो मैंने कहा अरे बाप रे, उस दिन मेरे को छोड़ना पड़ा। तो खैर अब आगे से जब भी वो आता है तो मैं कहता नहीं बगल में मेरा हिस्सा दूसरे वाले को दे दीजिए, वो खुश होकर खाया कैसे कहना। तो कहने का तो ये है कि हमारे हृदय में ये अभाव नहीं होना चाहिए कि अरे मैं इंद्रिय तृप्ति छोड़ रहा हूँ तो मुझे अभाव महसूस हो रहा है, नहीं, वो भक्ति करते रहेंगे तो अभाव महसूस होना ही बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास भगवान के बारे में बात करने के लिए विषय हैं, भगवान के बारे में सुनने के लिए विषय हैं, बहुत सारे भगवान की सेवा के लिए बहुत सारे विषय हैं, तो इसलिए अभाव का कोई मतलब नहीं होता। लास्ट लाइन को देख लीजिए, यह वैसा ही जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। यही उदाहरण दे रहा था ना मैं, भूखा व्यक्ति अभाव का अनुभव करता है ना, और देखिए बहुत अमेजिंग बात है, बहुत अच्छा उदाहरण है। भूखा व्यक्ति के मन में, भूखे व्यक्ति के मन में क्या दिखाई पड़ता रहता है, हर जगह देखता है तो खाने का खा मिलेगा। अगर उसको आप सेब दिखा दिए नकली सेब तो वो भी सोचेगा अरे काश असली होता मैं खा लेता। कल एकादशी थी, जो लोग व्रत कर रहे थे जब तक नहीं खाते हैं और कुछ नहीं चलता ना मन में, कब खाने को मिलेगा, कब खाने को मिलेगा। लेकिन जब पेट भर जाता है तब खाने के बारे में नहीं सोचते हो, अब वस्तु आ भी जाएगी ठीक है रख दीजिए फ्रिज में रखने के शाम को खाएंगे, ऐसा होता है ना। उसी प्रकार से अगर हम लोग भक्ति में तृप्त हो जाते हैं, भक्ति के कार्य में तृप्त हो जाएंगे, अपने आप इंद्रिय से मिल जाएंगे, फिर भी हमको बचना चाहिए, फिर भी हमको भोगों से बचना चाहिए और अधिक से अधिक अपने जीवन में भक्ति के कार्य में लगाए रखना चाहिए। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके कि क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवय मनः कृष्ण पादार विंदयो वचान से वैकुंठ गुणानुवर्णन। और इसके बारे में तो मैं पूरी कथा सुनानी पड़ेगी तो वह हम नहीं बताएंगे, लेकिन देखिए बस एक मन के स्वभाव के बारे में समझिए। मन को कहीं ना कहीं से रस मिलना चाहिए और जब तक वो रस मिलता रहेगा तब तक वो अन्य रसों के प्रति आकृष्ट नहीं होगा। और भक्ति का रस भौतिक रसों से बहुत श्रेष्ठ है, तो हमें प्रयास करना चाहिए इस प्रकार से अपने चित्त को बार बार भगवान में लगाएं। अगर हम लोग स्थिति में नहीं हैं कि हमारी प्रज्ञा स्थित नहीं है तो हमें करना क्या है, भक्ति करते रहें, करते करते अपने आप हमारी प्रज्ञा हमारी जो बुद्धि है वो फिक्स हो जाएगी, हम भक्ति ही करनी है, हमें और कोई कार्य नहीं करना। किसी का कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ और नहीं तो हम रुकेंगे।